नमस्कार भारत, तारीख 10 जून दिन बुधवार। मैं हूं नितिन श्रीवास्तव। भारतीय सेना के तेवर तीखे, चरमपंथियों को म्यांमार में घुसकर मारने का दावा।
वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट द डिफेंस फोर्सेस फॉर देयर बोल्ड एंड करेजियस डिसीजन।
गिरफ्तार किए गए दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर का इस्तीफा हुआ मंजूर। नरेंद्र मोदी सरकार ने 4,500 एनजीओ के लाइसेंस किए रद्द। और राजस्थान में क्यों बढ़ रही है दलितों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं?
पॉपुलेशन के बेसिस पे इसको नहीं कैलकुलेट करते, बल्कि रेट, मतलब पर लाख पे कितने क्राइम हो रहे हैं, वो राजस्थान लीडर है पूरे देश में।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, फैसल मोहम्मद अली से। भारतीय फौज ने पड़ोसी म्यांमार की सीमा में घुसकर मणिपुर में सक्रिय उग्रवादी समूह के कुछ सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की है। मणिपुर में पिछले हफ्ते उग्रवादियों के एक हमले में 20 लोगों की मौत हो गई थी। कुछ जगहों पर यह कहा जा रहा है कि भारत सरकार की ये कार्रवाई पूर्वोत्तर के विद्रोहियों को सबक सिखाने का एक तरीका है। मिस्र के प्रतिष्ठित अल अजहर यूनिवर्सिटी के इमाम ने कहा है कि पश्चिमी देश आईएस यानी इस्लामिक स्टेट का इस्तेमाल इस्लामी दुनिया को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। अहमद अल तैयब ने एक फ्रांसीसी समाचार एजेंसी से कहा कि अमेरिका उस क्षेत्र में बंटवारा चाहता है ताकि उस क्षेत्र में इस्लामी मुल्क इसराइल की बराबरी न कर सकें, और इस काम में आईएस उनका मोहरा है। हालांकि उन्होंने आईएस को धन मुहैया करवाने वाले खाड़ी के कुछ देशों पर उठाए गए सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। इस बीच आईएस इराकी शहर मोसुल को कब्जा करने के साल भर पूरे होने का जश्न मनाने जा रहा है। आईएस के कामकाज पर येल विश्वविद्यालय के एंड्रयू मार्श ने कहा,
द तालिबान वाज वेरी सक्सेसफुल एट कंट्रोलिंग टेरिटरी।
तालिबान कब्जे के क्षेत्रों पर राज करने, विरोधियों को हटाने और अपने फैसले को अफगानिस्तान के बड़े भूभाग पर लागू करने में सक्षम था। अलकायदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के काम में यकीन रखता था। इस्लामिक स्टेट भी वैसे चकाचौंध कर देने वाले कामों में यकीन रखता है, लेकिन उनका ध्यान बड़े तौर पर उन इलाकों में राज करने को लेकर है जो उनके कब्जे में है। ब्रितानी संसद में हुए मतदान के जरिए तय पाया है कि 2017 तक मुल्क में यूरोपीय संघ के साथ बने रहने का के सवाल को लेकर एक जनमत संग्रह करवाया जाएगा। विदेश मंत्री फिलिप हैमंड ने कहा कि ब्रिटेन में इस मामले पर 1975 में हुए जनमत संग्रह के बाद के सालों में यूरोपीय संघ में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि नई संधियों के होने के बाद यूरोपीय संघ अधिक ताकतवर तो हुआ है, लेकिन सदस्य देशों पर बहुत सारी रुकावटें लग गई हैं। ब्रितानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन संघ में बदलाव की बात पिछले दिनों करते रहे हैं। यूरोपीय कमीशन के अधिकारी वॉल्डिस डॉम ब्रॉक्सिस ने कहा है कि ग्रीस और उसके अंतर्राष्ट्रीय कर्जदारों के बीच आने वाले चंद दिनों में कोई समझौता होने की संभावना है। डॉम ब्रॉक्सिस ने कहा कि पहले तो ये देखना होगा कि ग्रीस सरकार कितना अतिरिक्त धन उगा सकती है। यह बयान तब आया है जब ग्रीस ने अपने कर्ज को चुकाने के लिए यूरोपीय संघ और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के सामने एक नया प्लान पेश किया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने समलैंगिकों के एक परेड में कहा है कि समलैंगिकों के साथ भेदभाव को नस्ल, जातीय, लिंग, धर्म और उम्र के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव की श्रेणी में रखा जाएगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं। आपके साथ मैं हूं नितिन श्रीवास्तव। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय सेना से जुड़ी एक बड़ी खबर से। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कल देर रात इस बात की पुष्टि कर दी कि भारतीय सेना ने म्यांमार के भीतर घुसकर चरमपंथियों के दो कैंप नष्ट कर दिए हैं। भारतीय सेना के मुताबिक इस हमले में बड़ी संख्या में चरमपंथी भी मारे गए हैं। पिछले हफ्ते ही मणिपुर में चरमपंथियों ने भारतीय सेना को निशाना बनाया था और उस हमले में गोरखा रेजिमेंट के 18 जवान मारे गए थे। सुनिए दिल्ली से दिव्या आर्य की रिपोर्ट।
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इस ऑपरेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला बताया। भारतीय सेना के मुताबिक मंगलवार सुबह म्यांमार सीमा पर दो अलग अलग स्थानों पर भारतीय सेना और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ हुई। भारतीय सेना मुख्यालय में सैन्य अभियानों के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल रणबीर सिंह के मुताबिक इस मुठभेड़ में चरमपंथियों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि उन्होंने मारे गए चरमपंथियों की संख्या स्पष्ट नहीं की।
इन द कोर्स ऑफ लास्ट फ्यू डेज वेरी क्रेडिबल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हैड बीन रिसीव्ड रिगार्डिंग फर्दर अटैक्स।
पिछले कुछ दिनों में हमें बेहद विश्वसनीय और सटीक जानकारियां मिली थीं कि हमारे खिलाफ कुछ और हमले हो सकते हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर हमने इन हमलों को रोकने के लिए अभियान चलाया।
रणबीर सिंह के मुताबिक मंगलवार सुबह भारतीय सेना ने म्यांमार सीमा के नजदीक चरमपंथियों के दो समूहों को नागालैंड और मणिपुर से जुड़ती म्यांमार की सीमा पर निशाना बनाया। इस अभियान में पड़ोसी देश म्यांमार के सहयोग की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा,
वी आर इन कम्युनिकेशन with the Myanmar authorities and we have traditionally had very good and close relationship with the Myanmar army.
हम म्यांमार के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग की ऐतिहासिक परंपरा है और हम भविष्य में भी उनसे सहयोग की उम्मीद रखते हैं।
हाल ही में मणिपुर में चरमपंथियों ने भारतीय सेना के खिलाफ बड़ा हमला किया था जिसमें 18 जवान मारे गए थे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि देश की सुरक्षा पर कोई भी खतरा होने पर आने वाले समय में भी उसे सख्ती से निपटा जाएगा।
हालांकि पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस नेता एके एंटनी ने इन हमलों को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताते हुए इन पर टिप्पणी करने से मना कर दिया, लेकिन एनडीए सरकार के वरिष्ठ मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूं दी।
For their bold and courageous decision to nail down the extremist.
रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि मैं सुरक्षा बलों को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत साहसी कदम लेते हुए म्यांमार की सरकार के साथ मिलकर इस तरह से चरमपंथियों पर हमला किया। इससे ये बात साफ हो गई है कि भारतीय सुरक्षा बलों को बिना वजह निशाना बनाए जाने की कोशिश को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रविशंकर प्रसाद के शब्द। वैसे भारत के इस कदम को लेकर दुनिया भर में अब चर्चा हो रही है क्योंकि आम तौर पर भारतीय सेनाएं या खुफिया तंत्र इस तरह की कार्रवाई से बचते रहे हैं, लेकिन क्या यह फैसला लेने के पहले म्यांमार की सरकार को पूरे भरोसे में लिया गया होगा? यही सवाल किया मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के निदेशक डॉक्टर अजय साहनी से।
देखिए, ये बहुत बड़ा हादसा हो गया था और कोई ना कोई इसका आप कह सकते हैं रिएक्शन या रिटेलिएशन होना बहुत आवश्यक था। अभी तक इस ऑपरेशन के बहुत ज़्यादा डिटेल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जाहिर है कि भारतीय जो ट्रूप्स हैं उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है और वहाँ पे जाके काफ़ी एक संख्या में मिलिट्रेंट्स को न्यूट्रलाइज किया है। अब ये मेरे मुताबिक म्यांमार की सरकार की सहमति के साथ ही हुआ होगा क्योंकि एक हिस्ट्री है भारत की जॉइंट ऑपरेशंस की भी म्यांमार के साथ, और ज़्यादातर म्यांमार का जो ओरिएंटेशन है वो बहुत ज़्यादा एडिया या कुछ ऐसा नहीं रहा है। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि ये दोनों देशों की सहमति से हुआ होगा।
इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार का ये कहना है कि ये जो डिसीजन था ये खुद प्रधानमंत्री मोदी के कंसेंट से लिया गया और उनकी तरफ से लिया गया फैसला था, तो ये क्या एक तरह से बड़ा सिंबोलिज्म नहीं है कि बराक ओबामा ने जैसे फैसला लिया था ओसामा के लिए या तो और तमाम इस तरह के केसेस देखने को मिले हैं, मोसाद का ऑपरेशन था म्यूनिक गेम्स के बाद जब उन्होंने ढूंढ के कुछ लोगों को मारने की बात कही थी, तो ये क्या इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट सा देखने को क्या मिल रहा है?
देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली तो ये कि एक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन इससे पहले नहीं हुए हैं, ऐसे कई तरह ऑपरेशन हुआ करते थे और ज्यादातर या तो ये डिनाइबिलिटी के उसके अंदर किया जाता था कि जैसे बांग्लादेश में कई ऑपरेशन हुए थे, त्रिपुरा की तरफ से फोर्सेस कई दफा जाके बांग्लादेश में कैंप्स को स्ट्राइक करके आ जाते थे, और भी कई थिएटर्स में ऐसी चीज हुई है उस जिसका जिक्र न किया जाए तो बेहतर है। लेकिन आमतौर पे इनको जो जो आपकी मिलिट्री पुलिस और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट सभी डिनाई करते थे। इसमें पॉजिटिव यह है कि हाँ, अगर प्राइम मिनिस्टर इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी फोर्स ने किया मेरी सहमति से किया, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना आवश्यक है कि ऐसे ऑपरेशंस का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, क्योंकि कल जो भी ये आतंकवादी संगठन हैं वो ये सोच के चलेंगे कि भाई हो सकता है ऐसा हमारे साथ फिर भी हो जाए, और वो प्रिकॉशंस लेना शुरू कर लेंगे। तो बेहतर ये होता है कि कोवर्ट ऑपरेशंस को कोवर्ट रखा जाए, ज्यादा इन चीजों की बात नहीं की जाए पब्लिक में, प्रेस में, और ये इस किस्म का ढिंढोरा न पीटा जाए। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है और उस वक्त प्रधानमंत्री कहते हैं, कोई ऑपरेशन डिटेक्ट हो जाता है और फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हाँ ये मेरी सहमति से हुआ, तो बात और है। लेकिन इस किस्म के ऑपरेशन की बातचीत न की जाए तो सबसे अच्छा रहेगा।
ये थे आंतरिक सुरक्षा मामलों के जानकार अजय साहनी। इधर भारतीय सरकार और गैर सरकारी संगठनों के बीच की जो तकरार है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी कुछ महीने पहले ही सरकार ने करीब 9,000 एनजीओ के पंजीकरण रद्द किए थे और अब फिर से करीब 4,500 ऐसे गैर सरकारी संगठनों पर विदेशी चंदे के मामले में वित्तीय पारदर्शिता की कमी दिखाने पर गाजगिरी है। सुनिए फैसल मोहम्मद अली से।
भारत सरकार ने 4,470 स्वयंसेवी संस्थाओं के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। अब ये संस्थाएं विदेशों से फंड हासिल नहीं कर सकेंगी। जिन संस्थाओं के लाइसेंस रद्द किए गए हैं उनमें कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और स्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट जैसे ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। इन स्वयंसेवी संस्थाओं के पंजीकरण को रद्द करने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा कानून के भीतर लिया है। खबरों के मुताबिक मंत्रालय ने इन संस्थाओं के कामकाज की जांच पड़ताल में सालाना रिटर्न्स फाइल न करने और दूसरी कई तरह की गड़बड़ियां पाई हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि गृह मंत्रालय ने इन सभी को पहले नोटिस भेजा था, जिसका जवाब देने के लिए उन्हें खासा वक्त दिया गया। जिन दूसरी संस्थाओं का विदेशी चंदा हासिल करने का लाइसेंस रद्द हुआ है उनमें चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय, गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली का गार्गी कॉलेज, विक्रम साराभाई फाउंडेशन और कबीर शामिल हैं। कबीर को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुरू किया था। कुछ दिनों पहले सरकार ने विदेशी चंदा कानून के कथित उल्लंघन के चलते 9,000 स्वयंसेवी संस्थाओं के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। भारत सरकार ने पर्यावरण के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन पीस के पंजीकरण को भी निरस्त कर दिया था और उसके सभी बैंक अकाउंट सील कर दिए थे। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक खातों पर लगाई गई रोक को अस्थायी तौर पर चालू करने के हुक्म जारी किए। भारत सरकार का आरोप रहा है कि ग्रीन पीस जैसी संस्थाओं के आंदोलन की वजह से मुल्क को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि कुछ एनजीओ की मुहिम से उन निजी कंपनियों को नुकसान हो रहा है जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नज़दीकी हैं। इस सिलसिले में वो गुजरात दंगों के पीड़ितों के लिए एक लड़ाई लड़ने वाली तीस्ता सीतलवाड़ का उदाहरण भी देते हैं, जिनकी संस्था पर सरकार ने कई तरह के आरोप जड़े थे।
और आइए अब दिल्ली में गर्म होती राजनीति की सुध लेते हैं। फर्जी डिग्री मामले में 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। देर रात आए एक बयान में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह कहा।
थोड़ी देर पहले जितेंद्र तोमर जी ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को भेजा है और मुख्यमंत्री जी ने उसे स्वीकार कर लिया है और उसको राज्यपाल महोदय को भेज देंगे।
यानी इस्तीफा स्वीकार हो गया। दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें साकेत अदालत में पेश किया गया था। कई घंटे चली सुनवाई के बाद अदालत ने तोमर को 4 दिन की रिमांड में भेजा। इस बीच जितेंद्र तोमर की आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि दिल्ली में हालात आपातकाल से भी बदतर हो रहे हैं। हमारी सहयोगी दिव्या आर्य ने इसी के विश्लेषण पर बात की वरिष्ठ पत्रकार हरतोष सिंह बल से।
जी नहीं, इससे तो इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, सीरियस इशू जरूर है। अब आप इससे माइलेज लेने की कोशिश करेगा, उन्होंने कई गलतियां की थी। तोमर के अगेंस्ट एक्शन, या कम से कम उनसे ये कहना चाहिए था जब तक इन्वेस्टिगेशन या केस पूरा नहीं होता हट जाना चाहिए था, पर इसके बावजूद जो दिल्ली पुलिस का एक्शन है ये एक्शन जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। ऐसी क्या जल्दबाजी थी, अरेस्ट की क्या जरूरत थी, जबकि एक कन्फ्रंटेशन चल रहा है पुलिस और सरकार के बीच में, तो ये एक्शन सस्पेक्ट है।
अब आम आदमी पार्टी के लिए आगे का रास्ता आसान हुआ है कि वो और मांग अपनी आगे बढ़ा सकते हैं कि इस तरह से अरेस्ट किया गया, इसका राजनीतिक असर क्या होगा उनके लिए?
देखिए, ये कन्फ्रंटेशन आगे बढ़ेगी, मेरे को नहीं लगता है कि सेंटर ये मांग मानना चाहता है या कोई ऐसी अंदेशा दिया है सेंटर ने कि ये मांग पे कोई गौर किया जाएगा। कन्फ्रंटेशन सीधी ये सेंटर के साथ है, एसजी सेंटर के बेस पे एक्ट कर रहा है, कह सकता हूँ होम मिनिस्ट्री के बेस पे एक्ट कर रहा है, पर पॉलिटिकल माइलेज तो मेरे को मिलता है केजरीवाल को मिलेगी, जहाँ के नुकसान होना चाहिए था क्योंकि ये केस सीरियस है तोमर के अगेंस्ट, पर तब भी जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है मेरे को लगता है इसका फायदा केजरीवाल को होगा।
और केंद्र सरकार को बीजेपी पे जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, क्या आपको लगता है कि वो कुछ अपना बचाव करने की कोशिश करेंगे, या फिर राजनाथ सिंह जी ने तो कहा कि उनका इससे कोई लेना देना है नहीं?
इसके सिवा तो कुछ राजनाथ सिंह या जो सेंट्रल सरकार है इसके अलावा कुछ कहेगी नहीं ऑन द रिकॉर्ड, बट आप और मैं जानते हैं कि दिल्ली पुलिस ऐसा एक्शन मिनिस्टर के अगेंस्ट कंसर्न मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, एलजी के बिना कंसल्ट किए नहीं लेती। जहां तक बीजेपी का डिस्टेंसिंग का सवाल है, मेरे को लगता है कि बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी को एक, वो क्या कहते हैं, ईगो टसल बना लिया है, जिसका उनको आई थिंक थोड़ा बहुत राजनीतिक नुकसान जरूर हुए।
एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ की नियुक्ति को लेकर, उससे पहले चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति को लेकर लड़ाई तो आमने सामने की है, पर सोनिया गांधी ने भी दोहराया है कि ये सारी दिक्कत जो है वो केंद्र में जो ताकत इस वक्त एक जगह बैठ गई है, जो जाहिर है उनका इशारा प्रधानमंत्री की तरफ है, उसकी वजह से है। तो इससे भी आपको लगता है ये ऐसे प्रहार विपक्ष की तरफ से और तेज होंगे, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर
पर? जरूर होंगे। ये एक दो ऐसी बातें जिसपे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहमत है, पर बाकी मुद्दों पे अलग अलग आवाजों पे बात होगी। पर ये बात जरूर है कि नरेंद्र मोदी की जो पोजीशन 6 महीने या साल पहले थी वो पोजीशन नहीं है। सवाल उठाए जाएंगे, सवाल खड़े किए जाएंगे, ऑपोजिशन अटैक करेगी, पर मेरे को लगता है अगले 2-3 महीने में आप देखेंगे कि ये जो पॉलिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है दिल्ली से हटके बिहार की तरफ जाएगी, ये कन्फ्रंटेशन चलती रहेगी, इसका जल्दी मेरे को हल होता हुआ नहीं लगता है।
और आम आदमी का सवाल ये होगा इस वक्त कि दिल्ली चलेगी कैसे, सरकार का काम कैसे चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी?
कि उसका मैं एक हटके, इस इशू से हटके, ये कॉन्फ्रंटेशन से हटके कि कई ऐसी चीजें हैं जिसपे आम आदमी पार्टी काम कर सकती है, उन चीजों पे तो उन्हें गौर करना चाहिए, क्योंकि लोग ये भी पूछेंगे कि लड़ाई ठीक है, आपके अगेंस्ट सरकार एक्ट कर रही है, ये भी ठीक है, पर बाकी जो कई चीजें हैं जिन पे आप कुछ एक्शन दिखा सकते हैं वहां तो एक्शन करके दिखाइए, या हर बार ही आपको जब इलेक्ट किया जाएगा तो यही कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगी क्या?
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बनाम भारतीय जनता पार्टी, ये थे वरिष्ठ पत्रकार हरतोष सिंह बल, और हमारे सहयोगी फैसल मोहम्मद अली भी अखबारों के पुलिंदे के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फैसल साहब, आज भी अखबारों में वही खबरें हैं क्या जो इन पर हम बातें कर रहे हैं, तोमर साहब के बारे में
और जिससे आपने शुरुआत की, म्यांमार में जो भारतीय सेना ने जाके कार्रवाई की है उसको लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया की बात अंग्रेजी अखबार की करें तो वो कहते हैं मैसेज टू नेबर्स, आर्मी इंटर्स म्यांमार इन हॉट परसूट ऑफ रिबल्स, के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके लिए एक संदेश है, कहता है ये साफ साफ, उसको इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है, और उसके बाद कहा गया कि आर्मी जो है वहाँ घुसी है फौज और उसने म्यांमार में कार्रवाई की है। इकोनॉमिक टाइम्स जो अंग्रेज़ी अखबार है उसका भी कुछ इसी तरह का, वो सिर्फ सब हेडलाइंस में कहते हैं कि 20 मिलिटेंट्स किल्ड इन क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन, 20 लोग मारे गए हैं,
अखबार संख्या बता रहे हैं
कुछ हिंदू, जबकि इस तादाद को 18 बता रहा है, नहीं माफ़ कीजिएगा, हिंदू कह रहा है कि 18 लोग जो मणिपुर में मारे गए थे ये उसका एक तरह से बदला लिया है। अमर उजाला बहुत साफ कह रहा है कि शहादत का बदला, सेना ने म्यांमार में घुस 20 उग्रवादी ढेर किया, म्यांमार सेना के सहयोग से सीमा पार पहली कमांडो कार्रवाई, उग्रवादी कैंप भी किए गए, तबाह। और इंडियन एक्सप्रेस लेकिन इसमें एक दिलचस्प पहलू दे रहा है, राजवर्धन सिंह राठौर जो कि होम, जो कि मिनिस्टर हैं, स्टेट ऑफ मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, उन्होंने जो है इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो दूसरी कंट्री हैं پاکستان کا نام لے کر انہوں نے کہا یہ ان کے لیے بھی ایک سندیش ہے کہ ہم وہاں پہ گھس کر اگر ضرورت ہوگی تو اس طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا معاملہ ہو سکتا ہے, شاید راجنیتک معاملہ بھی بڑھے. ساتھ ساتھ اگر انڈین ایکسپریس کی بات کریں تو پولیس کیپ آپ واٹ بوائلنگ اریسٹ تومر ہی کوئٹس, جو کہ وہاں کے قانون منتری ہیں, دلی کے جو قانون منتری تھے ان کی گرفتاری ہوئی فرضی ڈگری کے معاملے میں, اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا استعفیٰ دے دیا ہے, چار دنوں کے ریمانڈ پر بھیج دیے گئے ہیں. نئی دنیا کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ حوالات سے قانون منتری کا استعفیٰ کہہ رہے ہیں وہ,
مطلب انہوں نے حوالات جا کر وہاں سے
حوالات میں جانے کے بعد. اور نوبھارت ٹائمس اس کو کہہ رہا ہے کہ قانونی شکنجے میں قانون منتری, ذرا اس کو دلچسپ بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. یہ بھی کہہ رہا ہے کہ گرفتاری کے بعد تومر کا استعفیٰ, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ منیش سسودیا جو ڈپٹی سی ایم ہے دلی کے اور کیندریہ گرہ منتری دونوں کا, انہوں نے راجناتھ سنگھ کا بیان چھاپا ہے. سسودیا کہہ رہے ہیں کہ دلی میں تانہ شاہی کے ذریعے آپات کال جیسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں, اور لیکن کیندریہ گرہ منتری راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ قانون منتری کی گرفتاری میں گرہ منترالے کی کوئی بھومکا نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ اپنا جو ہے کام ہو رہا ہے. قانون منتری کا تھانے سے استعفیٰ اور منہ توڑ جواب, فرضی ڈگری دلی کے قانون منتری گرفتار, استعفیٰ دیا, اسی طرح کا جو کہ ہیڈ لائنس جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. اس میں جو ایک دینک بھاسکر نے جو ایک نیا پہلو دینے کی کوشش کی ہے میانمار والی بات میں, اس میں کہا ہے کہ میجر روچیکا شرما جو ہے وہ پہلی بار کسی مہیلا آفیسر نے بریفنگ کی ہے پریس کو, اس پورے معاملے کو لے کر مہیلا والی معاملے کو اٹھانے کی کوشش کی ہے. اور انت میں ایک خبر نئی دنیا میں کہہ رہا ہے کہ بامیان میں جس کو طالبان نے, جو بامیان کی بہت بڑی بدھ کی پرتیما تھی جس کو برباد کر دیا تھا, اس کو دو دمپتی ہیں جنہوں نے پھر سے اس کو لیزر سے بنایا ہے اور وہ پھر سے لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتا ہے.
کیا بات ہے, پھر سے مسکرائے بدھ. بہت بہت شکریہ فیصل صاحب اس پورے اخباروں کی سمیکشا کا. پچھلے مہینے راجستھان کے ڈانگاواس گاؤں میں زمین کو لے کر ہوئی ہنسا میں 5 دلت مارے گئے تھے اور 1 درجن کے قریب گھائل ہوئے تھے. مانوادھیکار سنستھائیں کہتی رہی ہیں کہ راجیہ میں دلت ویرودھی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں. جب بھی دلت آواز اٹھاتے ہیں ان پر کتھت جاتیہ حملے ہوتے ہیں. دلتوں پر بڑھتے حملوں کے پیچھے آخر کیا کارن ہے؟ ہمارے سہیوگی زبیر احمد نے راجستھان سے لوٹ کر تیار کی یہ رپورٹ.
احمد نگر کے ساگر سیجوال کو بابا صاحب کے رنگ ٹون, اپنے فون پہ رنگ ٹون لگانے کے کارن مار دیا جاتا ہے. دیکشن علی کو ہنر کے باوجود اس کے نام کے کارن نوکری نہیں ملتی ہے.
راہل گاندھی حال میں ایک سبھا میں دلتوں کے خلاف ہونے والے اتیاچاروں کی تازہ مثالیں گنا رہے تھے.
تو یہ گھٹنا بتاتی ہے کہ ابھی دیش میں آرتھک افسر سب کو برابری سے نہیں ملتا ہے.
دلتوں کو اب بھی ساماجک نیائے کا انتظار ہے, اس بات سے کسی کو انکار نہیں. یہ بات اور ہے کہ راہل گاندھی کی کانگریس پارٹی 60 سال ستہ میں رہنے کے باوجود انہیں برابری کا درجہ دلانے میں ناکام رہی. پچھلے کچھ سالوں میں دلتوں کے خلاف ہنسا کی وارداتیں بڑھی ہیں. پچھلے مہینے راجستھان کے ڈانگاواس گاؤں میں 5 دلتوں کی ہتیا اور اس سے 3 مہینے پہلے ایک بوڑھی دلت مہیلا کو زندہ جلا دینے جیسے کانڈ اس بات کا سنکیت ہے کہ راجستھان دلتوں کے خلاف اتیاچار کے معاملے میں آگے آگے ہے. ادھکتر وواد زمین کو لے کر ہے. ڈانگاواس کے پورو سرپنچ رام کرن جاٹ سماج کے ایک ورشٹھ بزرگ ہیں. ان کے گاؤں کے دلتوں کے خلاف ہوئے حملے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ غلطی میگھوال یعنی دلت سماج کی ہے اور یہ کہ انہیں زمین پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے تھا.
غلطی تو آپ سوچ لو اگریسو میگھوال سماج تھا, کیونکہ جب اس کھیت کے اوپر دونوں کورٹ سے اسٹے تھا تو کیا کارن تھا کہ مطلب وہ وہاں پر جاوے.
میں نے اس ہنسا کے فوراً بعد کا ریکارڈ کیا ہوا ایک ویڈیو دیکھا جس میں میں نے دیکھا کہ ایک ویکتی کا پیر کاٹ دیا گیا. ایک اور شخص اپنی جانگ سے بہے خون میں لت پت زمین پر پڑا, درد سے کراہ رہا تھا, وہ بچ نہ سکا. ویڈیو میں دیکھا کہ ٹریکٹر جل رہا تھا اور کچھ موٹر سائیکلیں بھی. اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے والے ایک ستھانیہ پترکار نے کہا کہ دلتوں پر حملہ کرنا ایک بات ہے لیکن انہیں اس وحشیانہ طریقے سے مارنا سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے. مانو ادھیکار سنستھا پی یو سی ایل کی کویتا شریواستو بھی دنگاواس گاؤں گئی تھی. ان کا کہنا ہے کہ یہ دلتوں کے خلاف بڑھتی نفرت کا نتیجہ ہے.
یہاں پہ بہت زیادہ ہیٹ کرائمز ہوتے ہیں, خاص طور سے جاتی چھوا چھوت کے نام پہ. راجستھان تو لیڈر ہیں दलितों के ऊपर जितनी एट्रोसिटीज हो रही हैं
पूरे भारत में, सभी राज्यों में सबसे ज्यादा यहाँ पे,
राजस्थान में केवल ज्यादा ही नहीं, देखिए पॉपुलेशन के बेसिस पे इसको नहीं कैलकुलेट करते हैं, बल्कि रेट, मतलब पर लाख पे कितने क्राइम हो रहे हैं, वो राजस्थान लीडर है पूरे देश में।
विशेषज्ञ कहते हैं कि दलित आवाज अब भी कमजोर है, मीडिया की सुर्खियों में वो उसी समय आते हैं जब उनकी हत्याएं होती हैं या वो धर्म परिवर्तन पर उतारू हो जाते हैं, समाज और सरकार तक उनकी आवाज सुनाई नहीं देती, शायद इसीलिए वो अब पहले से अधिक आवाज उठाते हैं और जहां वो आवाज उठाते हैं उन्हें खामोश करने की कोशिश की जाती है, जैसा कि कविता श्रीवास्तव कहती हैं।
भाई हमले तो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि दलित असर्ट कर रहे हैं, अगर दलित असर्ट ना करें तो हमले नहीं होंगे, अगर यूं ही जमीन हैंडओवर कर देते तो क्या हमला होता, जो भी कम्युनिटी, जो सबॉर्डिनेटेड कम्युनिटी है जिसका दोयम दर्जा है, अगर वो असर्ट करेगी तो दबंग जाति वाले हमला करेंगे ही।
मानवाधिकार के एक स्थानीय कार्यकर्ता अनंत भटनागर कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन अब तक नहीं आया है जिसके कारण समाज में असमानता खत्म नहीं हो सकी है और इसीलिए दलितों पर हमले होते हैं।
ये कहना है, शहरों को देखकर तो बड़ा अच्छा लगता है कि सब कुछ सही हो गया है, शायद ऐसा लगता है, लेकिन सोशल ऑर्डर को चेंज करना एंड पॉलिटिकल ऑर्डर, वो पॉलिटिकल ऑर्डर की विल जरूर हो सकती है लेकिन उसके हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो मेरा ये तो ये मानना है कि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन अभी भी विशेष रूप से नहीं आया है और इसके पीछे इतने वर्षों के संस्कार भी हो सकते हैं कि जिन हैबिट्स के साथ हम जीते आए हैं, गलत मूल्यों के साथ जीते आए हैं, उसको परिवर्तन करने में समय लगेगा।
इन दिनों भारत में दलित नेता बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म की 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, हर जगह समारोह हो रहे हैं, केंद्रीय सरकार के अलावा कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कई समारोह का आयोजन करने में जुटी हैं, लेकिन इसके बावजूद दलितों के विरुद्ध अत्याचार का अंत होता नजर नहीं आता। जुबैर अहमद, BBC, दांगवास गांव, राजस्थान।
भारत और बांग्लादेश के बीच आज से ढाका में टेस्ट श्रृंखला का एकमात्र टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। इससे पहले 2009 में बांग्लादेश में ही हुई श्रृंखला को भारत ने 2-0 से जीता था। कैसी है दोनों टीमों की तैयारी, सुनिए आदेश गुप्त की रिपोर्ट।
विराट कोहली की कप्तानी में भारत के अधिकतर खिलाड़ी पहली बार बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलेंगे। खुद विराट कोहली अभी तक 33 टेस्ट मैच खेल चुके हैं लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ वो पहली बार टेस्ट क्रिकेट का आनंद लेंगे, वो भी कप्तान के रूप में। दूसरी तरफ बांग्लादेश आज तक भारत के खिलाफ अपनी ही जमीन पर 8 टेस्ट मैच खेल चुका है, 7 में उसे हार मिली, 1 मैच ड्रॉ रहा, पहली जीत का उसे इंतजार है। वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव का मानना है कि इस बार बांग्लादेश के तेवर अलग होंगे।
पिछले कुछ दिनों में बहुत शानदार प्रदर्शन उनका रहा है, खासकर एक दिवसीय टीम का, क्योंकि विश्व कप में क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, उसके बाद पाकिस्तान को हराया, तो उनके हौसले बुलंद हैं। और जिसको कहते हैं ना, खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, भारत के पास बहुत कुछ है खोने के लिए, अगर वो ड्रॉ भी करा देते हैं तो उनके लिए जीत के बराबर मैच होगा।
वैसे फतुल्ला का विकेट देखकर बांग्लादेश के श्रीलंकाई कोच चंडिका हथुरु सिंघे थोड़ा हैरान हैं, क्योंकि पिच पर घास है, लेकिन भारत के पूर्व ऑलराउंडर मदनलाल की राय बिल्कुल अलग है।
थोड़ा सा दोनों कैप्टन के लिए अब ये सोचना है कि क्या किया जाए, बैटिंग की जाए या बॉलिंग की जाए पहले, और विकेट में कुछ नहीं होने वाला क्योंकि धूप इतनी पड़ती है कि आपको कोई जो घास भी रखी है वो सब सूख जाती है, विकेट काफी ड्राई हो जाती है, तो टर्न करने के ज्यादा चांसेस है।
और अब फैसल मोहम्मद अली से एक सुनते हैं प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। फीफा के पूर्व उपाध्यक्ष जैक वार्नर ने आरोप लगाया है कि अमरीका संस्था के बड़े अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे साल 2022 के फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी नहीं मिल पाई। वार्नर ने एक लेख में कहा है कि उनके और 13 दूसरे लोगों के खिलाफ की जा रही जाँच बदले की भावना से हो रही है। उन्होंने कहा कि अमरीका ये कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में 2010 विश्व कप की मेज़बानी के लिए रिश्वत दी गई थी, लेकिन ऐसा कर वो निंसल मंडेला के नाम पर धब्बा लगा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री एस्टन कॉटर ने समलैंगिकों की एक परेड में कहा है कि समलैंगिकों के साथ भेदभाव को नस्ल, जातीय, लिंग, धर्म और उम्र के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव की श्रेणी में रखा जाएगा। रक्षा मंत्रालय में काम करने वाले गैर फौजी लोग पहले से ही इस तरह के किसी भेदभाव से सुरक्षित रखे गए थे। BBC समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम। एक घंटे बाद यानी भारतीय समय अनुसार 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी विश्व भारती कार्यक्रम में। तब तक के लिए नितिन श्रीवास्तव को अनुमति दीजिए।